नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव से भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों को लाभ होगा। विश्व आर्थिक मंच के अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में ये कहा गया है। वहीं दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को लेकर अलग अलग विचार हैं, जहां कुछ अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर मंदी इस साल आने की आशंका है, वहीं कुछ इससे सहमत नहीं है। विश्व आर्थिक मंच से जुड़े मुख्य अर्थशास्त्रियों के राय के आधार पर तैयार परिदृश्य में WEF ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से अलग अलग होगी। आर्थिक नीति के मोर्चे पर 72% अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले 3 साल में विभिन्न देशों में सक्रियता के साथ औद्योगिक नीति को लागू करने का चलन बढ़ेगा। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों को ये नहीं लगता कि हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में जो संकट आया है उससे व्यवस्था के स्तर पर कोई बड़ी समस्या है। हालांकि इस साल बैंकों के विफल होने के मामले और समस्याएँ सामने आ सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच के परिदृश्य के अनुसार एशिया में आर्थिक गतिविधियां तेज रह सकती हैं। चीन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को फिर से खोले जाने से वहां गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसका सकारात्मक असर पूरे महाद्वीप पर देखने को मिलेगा। फिलहाल मजबूत साबित हो रहा है, लेकिन वृद्धि सुस्त बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और कई देशों में रहन सहन की लागत ऊँची बनी हुई है। घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी रही और BSE सेंसेक्स 276 अंक से अधिक लाभ में खुला। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली जारी रहने और अप्रैल में रिकॉर्ड GST संग्रह के बीच ये तेजी आई। कारोबारियों के अनुसार एशिया के अन्य बाजारों में मजबूत रुख और सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज और IT कंपनियों के शेयरों में लिवाली से भी बाजार को अच्छा समर्थन मिला। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 276.61 अंक की बढ़त के साथ 61,389.05 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 89.85 अंक चढ़कर 18,154.65 अंक पर खुला। अप्रैल में माल एवं सेवा कर यानी GST संग्रह सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा। ये किसी महीने में अब तक का सर्वाधिक GST संग्रह है। अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में 10 पैसे लाभ के साथ 81.72 प्रति डॉलर पर खुला। अन्य वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर के कमजोर होने तथा घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत रुख से रुपये में मजबूती आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी निवेश और कच्चा तेल का भाव $80 प्रति बैरल के नीचे आने से भी रुपए को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे चढ़कर 81.72 पर खुला। शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 81.82 पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार और शेयर बाजार महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सोमवार को बंद थे। सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सोमवार को नए मानव संसाधन निदेशक मिले। दोनों कंपनियों ने बयान में ये जानकारी दी। KS शेट्टी ने HPCL के निदेशक का पदभार संभाला, जबकि राजकुमार दुबे BPCL के निदेशक बने। HPCL ने बयान में कहा, HPCL के निदेशक बनने से पहले शेट्टी HPCL में कार्यकारी निदेशक थे। उनके पास कार्यकारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी था। BPCL ने एक बयान में कहा कि दुबे के पास उद्योग में काम करने का 34 साल से अधिक का अनुभव है। भारत ने सार्वजनिक खरीद के लिए भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से बोली लगाने वाली इकाइयों के लिए आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया है। इसमें वो इकाइयां भी शामिल हैं जिनका उन देशों से लाभकारी स्वामित्व है। इसके अनुसार आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन भौतिक रूप में जमा करना आवश्यक है। DPIIT के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि संशोधन के तहत अगर विनिर्माता, सेवा प्रदाता, ठेकेदार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने वाली इकाई अलग हैं तो बोलीदाता को उन सब के बारे में पूरा ब्यौरा देना होगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था होने की स्थिति में उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों के बारे में ब्यौरा भी साझा करना होगा। संवेदनशील क्षेत्रों को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। इनमें 1 परमाणु ऊर्जा, रक्षा तथा अंतरिक्ष तथा अन्य हैं, तथा नागर विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और औषधि को 2री श्रेणी में रखा गया है। बोलीदाता को जो ब्यौरा देना है उनमें कंपनी का नाम और बोलीदाता कंपनी के वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति का नाम, जिस देश में पंजीकरण है उसका नाम, बोलीदाता तथा लाभार्थी व्यक्ति के बीच मध्यस्थ कंपनियों के बारे में जानकारी, उनके बीच रिश्ते आदि की जानकारी शामिल होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने अप्रैल 2020 में भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाली विदेशी निवेश के लिए पहले से मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था। इसका मकसद कोविड महामारी के बीच घरेलू कंपनियों की स्थिति का फायदा उठाकर उसके अधिग्रहण के अवसर पर रोक लगाना था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।